ہمارے کام کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، ہم سب کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تک پہنچیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، سب سے اپنے تعلق ہم نے بنائے ہیں، ہمارا تعلق اپنے اللہ سے بہت کمزور ہے، ساری محنتیں ساری قربانیاں ساری دور دور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم اللہ والے بن جائیں، لوگوں میں اللہ والا سمجھتے ہیں، اللہ میں اللہ والا بنا دے،
آمین،
کوئی ہوتا ہے دیوانہ، کوئی بنتا ہے دیوانہ، لوگ ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں دیوانہ بنا دے، یہ کام دیوانوں کا ہی ہے، یہ راہ اہل وفا ہے، چلنا صبر صبر کر، ہوشیار گر رہے ہیں اور دیوانے چل رہے ہیں، ابھی سمجھدار آدمی کیا سمجھے گا، کھانا کھایا ہے، گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کوئی کونا مل جائے تو آرام ہو جائے، نیند مل جائے گی تو بشاشت آ جائے گی، باقی مجلسوں میں بہت جم کے بیٹھوں گا، یہ سمجھداری ہے ناداروں کو، اور دیوانے کیا، ابھی کھایا، ابھی نماز، ابھی مجلس، تھکے آئے اور اپنی بستیوں سے سفر کر کے آئے، پھر آ کر کھانے میں انتظار ہوا، پھر کھانے کے بعد نماز میں انتظار ہوا، اب نماز کے بعد کیا، بات کرنے کے لیے، بات سننے کے لیے، اب ہم یعنی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، یہ کام ہی دیوانوں کا ہے، ہاں جب آدمی دیوانے وار کام کرتا ہے تو نوازا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا بناتے، اللہ کے بن جائے اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم سب کی محنت اس لیے ہے، آج میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر بہت محبتیں جمع ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں، نجاتی محبتیں بھی ہیں اور حقیقی محبتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے دل کو خالص اللہ کی محبت کے لیے فارغ کر دینا، میرے دل میں اللہ کی ایسی محبت آ جائے جیسے صحابہ کی زندگیوں میں، یہ چاہ جا رہا ہے، ویزا تین لوگ آمن کما آمن الناس، ایسے بنو جیسے صحابہ بنے، اپنے دلوں کو ایسے بناؤ جیسے صحابہ نے بنایا، جب اللہ کی محبت میں دل خالص ہو جاتا ہے نا تو پھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اس کی علامت ہے، دنیا میں مزہ نہیں آتا، دنیا میں رغبت نہیں ہوتی، زندگی ملیے جیئیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے، لیکن رغبت شوق مزہ لذت سے نہیں آتی، وہ بیماروں کی طرح رہتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ بیمار ہوئے، آپ کی عادت کے لیے ایک مجمع آیا، اس میں ایک نوجوان بھی تھا، اس کا بدن لاغر اور دبلا ہو رہا تھا، اس کا چہرہ درد پڑ رہا تھا، عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ پوچھا بیٹا تمہارا کیا حال ہو رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ نئے امیر مومن بس آزار اور بیماریاں لاحق تھے، لیکن دل کی آنکھ والے تھے، بتا نہیں بیٹا حقیقت بتاؤ کیا ہے، وہ کہنے لگا امیر مومنین میں نے دنیا کا مزہ چکھا تو مجھے بہت کڑوا معلوم ہوا، دنیا کا مزہ کیسے ہوتا ہے،
بہت کڑوا،
ہمیں دنیا کا مزہ کیسے لگتا ہے، نہیں تھا، اگر اس مجمع سے کہا جائے کہ رات میں دعا ہوگی اور دعا کے بعد سے یہیں سے چار چار مہینے جانا ہے تو ہمیں کون سی دنیا ہمیں یہاں سے
ये हमारा थर्मोमीटर है। सहाबा का मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजलिसों के अंदर जब नाम पुकारा जाता था, आयना जैद इब्ने हारिस, जैद इब्ने हारिस कहाँ है, खड़े हो जाओ, आयना जाफर, जाफर खड़े हो जाओ, अब्दुल्लाह इब्ने रवाह खड़े हो जाओ, नाम पुकारा जा रहा है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ऐलान कर रहा है कि जैद तो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे और इस तकाजे पे जाकर कबूल हो जाएंगे। अब जैद इस तकाजे पे जाकर मूता में कबूल हो जाएंगे, इनकी कब्र मूता के मैदान में बन जाएगी और फिर मुसलमान अपना जिम्मेदार जाफर को तय करेंगे और जाफर भी अल्लाह के रास्ते में जाएंगे और जाफर भी कबूल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर तीसरा नाम लिया अब्दुल्लाह इब्ने रवाह का कि अब्दुल्लाह इब्ने रवाह भी अल्लाह के रास्ते में जाफर के बाद मुसलमानों के अमीर होंगे और वो भी अल्लाह के रास्ते में कबूल हो जाएंगे। फिर मुसलमान उस वक्त में मशवरे से अपना चौथा अमीर तय करेगा। एक यहूदी बात सुन रहा था, उसने कहा कि ये तीनों मदीने में जरूर वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप सीरत उठाकर देखिए, जैद की छोटी बच्ची है जैनब, बड़ी प्यारी बच्ची, हुजूर को जिससे मोहब्बत है तो बाप को कितनी मोहब्बत होगी। जब फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर मिंबर पर खुतबा देते हुए अपनी गोद में लेते थे। कितनी प्यारी बच्ची होती, लेकिन अगर जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस बच्ची की मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में निकलने से माने नहीं हुई। जाफर सनिदी 6 में मदीना आए और 7 में मुता हुआ है, 1 साल। और कब से कहते जाफर, हम तो कहते ना अभी मैं चिल्ला लगा के आया, अरे अभी मैं 3 रोज लगा के आया, है ना। और आपके यहाँ तो ये रिवाज नहीं है, अभी मैं रमजान में गया था हैदराबाद, तो वहां पर एक जिम्मेदार साथी देहरादून की तश्कील के लिए, तो 4-5 नाम थे तो लेके गए, तो हम बात करते करते आपका वक्त कब लगा था, कि परसों लगा, दूसरे को पूछा आपका वक्त कब लगा था, परसों लगा था, तीसरे को पूछा आपका वक्त कब लगा था, परसों लगा, मेरे लेबर पे नाराज हुआ, इनका विचार है परसों आए ना आप उनकी तस्करी करते, अरे अमीर साहब इनसे पूछो कौन से साल में लगा, पूछा तो किसी का 10 साल पहले, किसी का 8 साल पहले, किसी का 15 साल पहले, वहां लंबे वक्त को परसों कहते, 10-10 साल पहले वक्त लगा के परसों जा कर आए, आप क्या ऐसा परसों तो नहीं है ना। अजय जाफर मक्का से हमशा गए, हमने ना फजाई की तालीम में गौर नहीं कर, देवरा दामद दरगाह भी फरमाते हैं, अभी मुल्क के पुराणों में दिल्ली में फरमाया, फैज़ इलाही में खड़ा था, आपने फरमाया हर काम करने वाला साथी फजाइल की तालीम एक तो इज्तिमाई एक घर की, और इसको अपने इनफरादी मुताले में भी लफ्ज ब लफ्ज पढ़े और रोजाना पढ़े, और हिदायत सहाबा पर गौर करे कि क्या बात थी कि साहबा ने, अरे साहबा को अल्लाह ताला ने कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कैसे बनकर आओ, पैसा तेज अलमामी मुकमा हमने ना कैसे बनाया साहबा ने अपने आप, उनके दिल कैसे बनाया। मक्का से हमशा हजरत जाफर गए और फिर वापस मक्का नहीं आए, पता चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो सन हिजरी 6 में हजरत जाफर मदीने आए, और अबू तालिब के बेटे होने की हैसियत से अल्लाह के नबी को बड़ी मोहब्बत थी जाफर से। सीरत में लिखा है कि जैसे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दो लाल हसनैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से अल्लाह के नबी मोहब्बत करते थे,
और सफर में जाते थे, आखिर में फातिमा से हसन हुसैन से मिलते थे, वापस आते सबसे पहले फातिमा हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते थे। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफर के घर भी जाते थे रजी अल्लाह तआला, और जाफर के तीन बच्चे और अब्दुल्ला और मोहम्मद, ये तीनों से भी अल्लाह के नबी को बड़ी मोहब्बत। अली रजी अल्लाह के भाई हैं जाफर, कितने सालों के बाद मदीने वापस आए अल्लाह के रास्ते से, और जब आए तो हुजूर खड़े हो गए। अजय जाफर के इस्तकबाल में अब आगे बढ़े, अजय जाफर को अपने गले से लगाया, जाफर की पेशानी में बोसा दिया हुजूर ने, उनका जाफर तेरे आने ने मुझे बहुत खुश कर दिया। इतनी खुशी हो, ऐसे जिगर के टुकड़े को अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में याद कर आए ना, जाफर जाफर खड़े हो जा, आपको जाना है। और जाफर नहीं वक्त खड़े होकर नहीं कहा कि अल्लाह के नहीं, पिछले साल ही आया मैं तो अफसा था, जिंदगी खपा कर आया मैं अफसा था, ये नहीं जवाब से निकला। और तश्कील कितनी हो रही है, एक चिल्ला तीन चिल्ले साल, कितनी तश्कील थी मस्जिद नबी की, तश्कील कितनी है बोलो ने, उनके दिल मेरे भाग्य ऐसे बने, दुनिया की रगबत उनके दिलों से निकल गई। अब्दुल्ला इब्न रवाह का नाम लिया तो कौन है अब्दुल्ला इब्न रवाह, हमारे इस मजमे में किसकी तीन बीवियां जरा हाल उठाओ, और तीनों दिन हयात, और गरीब नहीं था, बड़ा ताजिर था अब्दुल्ला इब्न रवाह रजी अल्लाह तआला, मदीने के बड़े ताजिर, तीन बीवियों का शौहर है। और हुजूर कह रहे अब्दुल्ला तुम्हें जाना है, इसने सीरत में लिखा है सहाबा जब घर से चलते थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उधार होती थी, और जब घर से चलते थे औरतें पूछती कहां जा रहे हैं, अल्लाह के नबी की मस्जिद में जा रहा है, नमाज पढ़ेंगे हुजूर के पीछे, हुजूर मजलिस लगाएंगे, उस मजलिस में शरीक होंगे, वहां से तश्कील होगी तो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, जिंदगी वापस अगर बाकी रही तो आएंगे, जिंदगी बाकी रही तो वापस आएंगे, और अगर जिंदगी पूरी हो गई तो फिर हमारी मुलाकात मदीने में नहीं होगी। तो और से पूछती फिर कहां होगी कि हौज़े कौसर पर नबी के सामने हमें महशर में आकर मुलाकात करने, गोया सहाबा अजान के बाद मस्जिदों को जाते थे तो मेरे भाइयों जिंदगियों से फारिग होकर जाते, हम इज्तिमा में भी आए जाओ अपनी औरतों को कहकर रात में आ जाऊंगा, और बराबर सुना नहीं होगा तो तीन मरतबा क्या सुनती है, मैं रात में आ जाऊंगा। कभी ऐसा कोई किरदार के दे मैं इज्तिमा में जा रहा हूं, और कभी हो सकता है कि इज्तिमा में कोई तकाजे होंगे, उम्मत के हालात सामने आएंगे, कोई कारगुजारी ऐसी होगी, और अगर जी ने मेरा आ गया तो हो सकता है मैं इज्तिमा भी जमात में चला जाऊं, ऐसा कोई कहकर आया। ये जज्बात हमारे मेरे भाइयों बना रहे हैं, हम अपने जज्बात बना, ये हमारे बड़े इस वक्त में बड़े हैं, हमारे बड़े तो हम कहते हैं ना, हमारे अकाबिर हमारे बड़े यूं फरमाते हैं, हमारे ये बड़े 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 जो है ना, ये इज्तिमाओं में आते थे ना तो इनकी वहां से तश्कील हो जाती थी। एक मरतबा वहां इस्माइल साहब ने हमको सुनाया कि मैं मदरसे से फारिग होकर आया, और फिर बाद में कुछ महीनों के बाद निकाह हो गया, और निकाह के तो दो महीने हुए होंगे, दो या ढाई महीने के, मेरे पास में मैंने जिम्मेदार साथी आए, मौलाना आपको चिल्ला लगा तो नहीं नहीं शादी हुई थी फिर भी चलो चिल्ला जाना है जाएंगे, तो मौलाना चिल्ले के लिए के चिल्ला लगा के अभी आखिरी दिन बाकी था, और एक इलाके में इज्तिमा था, वहां पर मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, मौलाना ने मुझसे मुलाकात की, क्या इस्माइल क्या हाल है, बस मौलाना चिल्ला पूरा हो रहा है, तो बोले तुम्हें हमें मिलके जाना है, अच्छा ठीक है, इज्तिमा थे जमात में नहीं, और जमात का जिम्मेदार के लिए रात में अहबाब मशवरा कर रहे थे, कोई चलाने वाला नहीं, कोई चलाने वाला, उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह को याद आ गया, کہ اسماعیل گودرا بھی ہے. مجھے بلایا فجر میں کہ اسماعیل یہاں کہ وہ جماعت جا رہی ہے, اس کے ساتھی ماشاء اللہ تیار ہے, ذمہ دار نہیں ہے, تمہیں وہ جماعت لے کے جانا ہے. اس کے لیے آئے تھے چلے کے لیے, دوسرے چلے کی تشکیل ہوگی, گھر میں نہیں بلن ہے. پھر چلا پورا کر کے آیا تو اس وقت کے اندر بڑوں کے پاس کاغذاری سنانے جاتے تھے, وہاں گئے تو پھر مولانا ملے. مولانا ماشاء اللہ بہت خوش ہو گئے, کاغذاری سنی. پھر وہاں پر ایک پیرون کی اربوں کی جماعت تھی, اس کا لے کے چلنے والے کا مسئلہ تھا. عالم ہونے کی حیثیت سے الوداع کی ضرورت تھی, بڑوں نے فیصلہ کر دیا کہ مولوی اسماعیل کو جانا ہے. تیسرا چلنا میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کی افطاری دیکھتے ہیں, اپنے بڑوں کے دسترخوان دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں کا روزہ نہیں دیکھا. ہاں روزے کے بعد افطاری ہوتی ہے, بغیر روزے کے شربت پیے تو کیا لذت آئے, لیکن روزے میں شربت پیتے تو کیا لذت آئے, آپ بتاؤ. سب روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ. افطاری کی لذت کھانوں کی ہوتی ہے, کھانوں کی نہیں ہوتی, وہ تو روزے کی لذت ہوتی ہے. بڑوں کا روزہ نہیں دیکھا. پھر مولانا تین چلے لگا کے شاید بمبئی میں تھے کہ وہاں پر تشکیل ہو گئی مولانا کی بیرون جانے, آپ کو یہ جماعت لے کے بیرون جانا ہے چار مہینے کے لیے. تو مولانا وہیں سے بیرون جماعت لے کے چار مہینے کے لیے کہنے لگے کہ عرب کے علاقے میں وقت لگا رہے تھے, غالباً یمن یا مصر میں بتایا تھا مولانا. وہاں ہمارے بڑوں کا سفر تھا, وہاں ملاقات ہو گئی. چار مہینے کی جماعت ماشاء اللہ ہندوستان کی بہترین کام کیا. ہمارے بڑے وہاں سے سفر کرتے ہوئے حج میں جا رہے ہیں, مولانا کو دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب کو, تو مولانا کہنے لگے, ایک ساتھی کا نام لیا میرے ساتھ کہ آپ دونوں کو حج میں آنا ہے. ارے حج میں کیسے آئے, رستے ہو گئے, مشورہ آپ کو حج میں آنا ہے. حج میں پہنچے, حاجی میں محنت کی, پھر واپسی کا اجازت مانگی کہ نہیں آپ کو ساحل آج جانا ہے, آئیوری کوسٹ افریقہ جانا ہے. وہاں سے وقت لگا کے جب دہلی پہنچے تو مولانا اس میں تھا کہ میں اب تو مولانا وہ سب سے کہتے ہوں گا کہ مولانا آپ کو ہی تقاضا نہیں ہے, تو گھر کا تقاضا ہے. تو کہا میں اپنے دو چوڑی کپڑے تھے اس کو دہلی میں مرکز میں دھوئے اور پھر اس کو میں نے سکھانے کا انتظار کیا. پھر وہ گیلے گیلے کپڑے تھے, میں نے مولانا بس اپنے پاس ملنے کے لیے کہ مولانا یوں ہے یوں ہے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کل چلے جانا, فجر میں مشورہ ہوگا, اس کے بعد دیکھ کر لیں گے. کہنے لگے, فجر میں مشورے کا انتظار کر رہا تھا, مولانا کے پاس پہنچا. مشورے میں مولانا نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک عالم ہے ماشاء اللہ, اندرون بیرون میں وقت لگا کے آیا, یہ جماعت اچھی طرح چلا رہیں گے, اس کا روپ گجرات کا بنا دو. تو ایک جماعت کی بیرون کی افریقہ کے علماء تھے, تو ان کے ساتھ انہیں بھیج دیا مجھے گجرات کے روپ کے اوپر, کہیں کا چلا پورا ہو جائے تو تو پھر گھر چل جانا. دہلی سے سورج کا روپ تھا, تو گاڑی گودرا سے نکلی, چائے بیچنے والا گودرا والا اس نے مولانا کو دیکھ لیا. وہاں اس زمانے میں تو نہ فون تھے نہ خطوط بھی مہینوں میں دو مہینوں میں پہنچتے تھے, تو چائے والے نے دیکھا برابر, میں نے مولانا ہی ہمارے مولوی اسماعیل صاحب ہی ہے. تو کہا ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کو کہنا میں خیریت سے ہوں, ابھی میں جماعت لے کے جا رہا ہوں سورت ان شاء اللہ چھٹے کے بعد. تو ان کے والد کو پتا چلا تو وہ گودرا سے سورت مولانا کو بلانے کے لیے آ گئے. تو فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے, سورت میں جوڑ تھا اور فضل بھائی کی بات تھی. اسی دن مولانا کے والد صاحب پہنچے تو مولانا فضل بھائی کو دیکھ رہے تھے, فضل بھائی بھی سمجھ گئے کہ والد صاحب کو دیکھ کر. ان کے والد صاحب بہت غصے میں آئے تھے, فضل بھائی نے ان کے والد صاحب کو کہا تم بھی چلا لگا دو مولانا کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے میں تو بیٹے کو لینے آیا تھا, میری بھی تشکیل ہو گئی, جا जैसे वैसे जान पड़ा, मैंने कहा ठीक है मेरे बेटे को चिल्ले के बाद भेजते हैं। मौलाना कहने लगे एक चिल्ले के लिए निकला था, 15 महीने के बाद घर पहुंचा। तो सहाबा घर से निकलते थे तो जिंदगियों से फारिग होकर निकलते थे। हम मेरे भाई कम से कम जहनों को तो फारिग करके आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो यहां की मजलिसों में फरागत के साथ बैठे, अपने जहनों को बिल्कुल फारिग कर दे, अपने दिलों को बिल्कुल फारिग कर दे। खाली बर्तन के अंदर 5-7 चीज डाली जा जाती है, जिस बर्तन में कोई चीज होती है उसके अंदर दूसरी चीज भी डाली जाती है। अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर दे। हम नहीं कहते आप दुनिया से खाली हो जाओ, हम कहते हैं अपने दिलों को खाली कर दे, हमारे दिल को फारिग कर दे, इस दुनिया से हमारे दिल को अलग कर दे, इसके नफे नुकसान का असर हमारे दिल पे ना हो। ईमान और यकीन की मेहनत से बात चाही जा रही है कि इसके आने की खुशी नहीं, इसके जाने का गम नहीं। सहाबा के दिल देखो, जाबिराना जाकिराना ताकतों के खजाने सहाबा के कदमों में आए, लेकिन उसके बावजूद मेरे भाइयों इतने अमानतदार थे कि किसरा का 50 किलो सोने का ताज जिस सहाबी के कदमों में आया, रात में अंधेरा था उसे उठा करके अमीर जमात की खिदमत में ला के पेश कर दिया, और फिर वो पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है, तो कहने लगे जिसने उसके सर से उठा के मेरे कदमों में डाला वो मेरे नाम को अच्छी तरह जानता है। थोड़ी दूर जाकर कहा 3 दिन का भूखा हूं, अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता तो ये ताज तुम तक नहीं आता। 3 दिन का भूखा हमारा जाता क्यों, दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो चुके थे, इसके आने का कोई असर नहीं, इसके जाने का कोई गम नहीं। इसका माल पैरों में आने वाली मिट्टी सब उनके लिए बराबर थी। आज मेरे भाइयों माल आने की उम्मीदों पर हमारी नमाजें खराब हो जाती है। किसी ने हमें नमाज से पहले चलते चलते कोई कारोबार सुनाया, ये कारोबार बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत प्रॉफिट है, यू है वो है ये है वो है, बस आधा पौना घंटा वो बातें हुई और इतने में हम अजान के बाद मस्जिद की तरफ आए तो वजू करते हुए वो ख्याल, इसने क्या करते हुए ख्याल, उसी वजू करते हुए ख्याल, मिसवाक करते हुए ख्याल, सुन्नत पढ़ते हुए ख्याल, फर्ज पढ़ते हुए ख्याल, इमाम साहब ने सलाम फिरा तो पता चला कि नमाज में था, बाकी उसके सारे ख्याल हैं। लाख लगाऊंगा तो 50 मिलेंगे, 1.5 होंगे फिर 1.5 लगाऊंगा तो 3 होंगे, फिर 3 लगाऊंगा तो 6 होंगे, फिर 6 लगाऊंगा तो 12 होंगे, फिर 12 का यूं करूंगा, फिर मकान ऐसे बनाऊंगा, फिर ऐसी 4-व्हीलर लाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये सारे पूरे प्लानिंग चल रहे हमारे नमाज में। अभी तो आए नहीं है वो, उसके आने की उम्मीद पर। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें एक मेहनत तरबियत की अता फरमाई, ये तरबियत की मेहनत, इस मेहनत से अपने दिलों की तरबियत करना है, इसलिए कि अल्लाह के यहां जो मुतालबा है वो दिल का है, चेहरों को सूरतों को अल्लाह नहीं देखते, अल्लाह तो दिलों को देखते हैं। अफला यालम इला हुसिला मा फिल कुबूर वहुसिला मा फिस सुदूर, इस पर फैसला है 250 ग्राम, इस दिल पर फैसला है अल्लाह, इसमें क्या लेकर आए, किसकी मोहब्बत लेकर आए, कौन से दीन पे चल गया है, कौन सा तरीका पसंद था। मक्का में रहने वाले को ईसाइयों का तरीका पसंद था, अल्लाह ताला ने मरने के बाद उनकी लाश को ईसाइयों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दिया, तारीख है, अल्लाह वालों ने वाकयात लिखे। असल में मेरे भाइयों हमारा वक्त जो है ना, ये जो मशीन आए ना हमारे हाथ में, इस मशीन ने हमारा बहुत सारा वक्त खा लिया है, हमें अपने असलाफ की तारीफ पढ़ने का वक्त नहीं, अहलुल्लाह की किताबों को पढ़ने का वक्त नहीं, तरबियत की मेहनतों का जूझ है अपने असलाफ की। और अल्लाह ने लिखा ना, जब मुझे
عبادت میں سستی ہونے لگتی ہے تو میں محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھتا ہوں. ایک ہفتہ تک غور سے پڑھتا ہوں تاکہ میرے اندر کی یہ عبادت کی سستی دور ہو جائے. کتاب میں لکھا ہے مکہ میں رہنے والے ایمان والا انتقال کے بعد مکے کے قبرستان میں دفن ہوئے جنت المعلا میں, لیکن میرے بھائیوں چند وقت کے بعد میں جب ان کی قبر کے اندر دیکھا تو یوروپ کی رہنے والی ایک بچی کا جو ہے اس کا چہرہ لوگوں نے دیکھا تو تعجب ہوا. کیا ہوا؟ ان کے گھر پر آ کر حالات پوچھے تو ان کی گھر والی نے بتایا کہ انہیں جنابت کے بعد غسل کرنے کو پسند نہیں تھا. اور وہ یوں کہتے تھے کہ عیسائیوں میں بہت اچھا معاملہ ہے کہ عیسائیوں میں جنابت کے بعد غسل کرنا فرض نہیں. بس کہاں پہنچا دیا. جس کو نبی کا دین پسند نہیں ہے, جسے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے, جسے نبی والا میرے بھائیوں سنت اور سنت والا طریقہ پسند نہیں ہے, ان کا آج رکھا ہمارا تاہیوں نے سب متون جیسے جیو گے ایسے مرو. من تشبہ بے قوم, جس سے محبت ہوگی, جس قوم سے محبت ہوگی, جس کا طریقہ پسند ہوگا آخرت کا ہے. چلے چار مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری مجلس جماعتیں بنانے کی مجلس نہیں ہے. ہم سب کو جماعت کا ممبر بنانے کے لیے نہیں بلایا. آ جاؤ بھائی جماعت کے ممبر بن جاؤ, تبلیغ کے ممبر بن جاؤ, یہ پارٹی مضبوط کرو, اس کے لیے نہیں بلایا. ہم تو محمدی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم سب کی تین ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے حال میں اپنے نبی کے دین کو سیکھو. جس حال کے اندر زندگی گزارے اس حال کا دین ہمیں ملا ہے. ہم تاجر ہیں تو تجارت کا دین ہمیں ملا ہے, ہم کاشتکار ہیں تو کاشتکاری کا دین ہمیں ملا ہے, ہم غریب ہیں تو غربت کا دین ملا ہے, ہم مالدار ہیں تو مالداری کا دین ملا ہے, ہم مرد ہیں تو مرد ہونے کا دین ہمیں ملا ہے. ہر حال کا دین دیا گیا, ہر یوم آتمز لکم دی بدو, ہر حال کا دین ملا ہے. دین سیکھنا ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے. ہم اپنے دین کو معلوم کریں. دین بازاروں میں نہیں ملے گا, اور دین اخباروں میں نہیں ملے گا, اور دین میرے بھائیوں مشینوں میں نہیں ملے گا. دین تو ملے گا مسجدوں کے اندر, اس لیے مسجد میں بلا دیں. دنیا میں باطل دکھا کے چلتا ہے اور دنیا میں حق سنا کے چلتا ہے, اس لیے مسجدوں میں بلا کر سنایا جاتا ہے. جمعہ میں علماء سناتے ہیں, تعلیم میں تعلیم کے ذریعے سنایا جا رہا, ہفتہ واری کے ساتھ سنایا جا رہا. اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں شبداریوں کے اندر پنچکوسا میں سنایا جا رہا, مراکز کے اجتماعوں میں سنایا جا رہا, اور ضلع کے اجتماع میں سنایا جا رہا, جن کو عبادت کی خانقاہوں میں سنایا جا رہا, جہاں بھی دیکھو میرے بھائیوں یہ سنایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اپنا دین معلوم ہو. دین ملے گا دینداروں کے پاس, اور دین ملے گا علماء کے پاس. ہمیں اپنے دین کو معلوم کرنا پڑے گا. اپنا دین سیکھنا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے مجبور نیت کر کے جائے, ہم اپنے حال کا دین معلوم کریں گے
انشاءاللہ.
سفر میں جا رہے سفر کا دین معلوم کرو, سفر کا دین کیا ہے. شادی کرنے جا رہے شادی کا دین معلوم کرو, شادی کا دین کیا ہے, نکاح کا دین کیا ہے,
نکاح کا دین عطا فرمایا. مکان بناتے ہیں, مکان کو اچھا سجاتے ہیں, کمرے کو اچھا سجاتے ہیں, فرنیچر اچھا بناتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ نہیں سیکھتے اپنے علماء کے پاس جا کر کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر گھر میں ڈالا. مسلمان خاوند ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان بیوی بن کر آنے والی بیٹی کو باپ یہ نہیں سناتا بیٹا آج تک تو میری بیٹی تھی, اب تو کسی کی بیوی بننے کے لیے جا رہی ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بچی کو کیا ذمہ داری سکھائی.
बाप भी माल देखकर देता है और बेटा भी माल देखकर लाता है। हमारी बुनियादें माल हो गई, हमारी बुनियादें दीन नहीं रही। इसलिए मेरे भाइयों, निकाहों के अंदर बरकतें नहीं आ रही, जिंदगियों में बरकतें नहीं आ रही, शिकायतें आ रही, शिकायतें, घरों में आग लगी हुई। माल देख कर करना ये मिजाज यहूदियत है, यहूदी मिजाज। खूबसूरती देख कर करना ये ईसाई मिजाज। दीन देख कर करना ये ईमानी मिजाज। नियत करो ईमानी मिजाज पर करेंगे अपने बच्चों के। हम खुद भी जो जवान हैं जिनकी हो गए उनको नहीं कहता हूं, वो लोग इंशाल्लाह नहीं बोले। जिनकी नहीं हुई है वो नियत करें इंशाल्लाह ईमानी मिजाज पर अपना निकाह करेंगे। हाँ, मदीना में निकाह हुआ, दोनों शौहर बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बतों से जिंदगी गुजर रही थी। दीन होता है तो मोहब्बतें होती है, मोहब्बत बाजार में नहीं मिलती, घरों में चीजें लाने से मोहब्बत नहीं होती, ये याद रखना। हमारा ये मोटा यकीन है कमजोर कि मैं अपनी बीवी के लिए चाइनीज पुलाव लेके आऊंगा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करेगी, और लाता भी है तो ऐसे छुपके लाता है, अपने कमरे में सीधा ले जाता है, अपनी बूढ़ी मां को भी पता नहीं चलता। अरे क्या हो गया तेरे को यार, जिस मां ने तुझे जना, जिस मां ने तुझे दूध पिलाया, जिस मां ने तुझे पेट में उठाकर 9 महीने चलाया, जिस मां ने तुझे परवरिश में कितनी जान पिशानी की, आज वो मां को फल लाता है तो छुपा के लाता है, खाने लाता है तो छुपा के लाता है, मिठाइयां लाता है तो छुपा के लाता है। दीन नहीं सीखा हमने, बीवी का हक बताया, मां का हक बताया, बीवी की मोहब्बत में अंधा हो गया, और बाजी लोग मां की मोहब्बत में अंधे हो गए। बीवी को बीवी का हक दो, मां को मां का हक दो। जिंदगी सीखा है तो निकाह होने के बाद में बड़ी मोहब्बत है, मदीने पाक में आपस में बड़ी मोहब्बत है। एक दिन शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे पानी पीना है, तो बीवी पानी लेकर आई। शौहर बड़े खुश थे, क्यों क्या मांग, क्या मांगे, जो मांगेगी वो दे दूंगा। तो उस खातून ने, उस बच्ची ने कहा मुझे तलाक चाहिए, तलाक मांगी उसने, मुझे जुदाई इख्तियार करा। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ शौहर को कि क्या बात है, अल्लाह की बंदी मुझसे कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? यानी आपने कहा ना कि जो मांगेगी वो दे दूंगा, मुझे तलाक चाहिए, आप तलाक दे। बोले ठीक है इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र कर लो, हम सुबह जाएंगे मस्जिद नबी में और जा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लेंगे। मशवरे के बाद रुक गई। दूसरे रोज मस्जिद की तरफ जा रहे थे, शौहर को ठोकर लगी, पैर में चोट आई, बीवी भी साथ थी। अपनी चादर में से उसने कोना फाड़ा और अपने शौहर की पट्टी लगाई, उसने पैर में जान जख्म आया और चलते हुए कहा कि अब मशवरा नहीं करना है तलाक का, हम सिर्फ शिरकत करके आ जाए। वापस घर आए तो शौहर ने पूछा कि क्या बात है, कल तू तलाक मांग रही थी और फिर अभी मना कर रही है, ये बाधरा क्या है? वो बच्ची कहने लगी असल में मैं देख रही थी कई दिन से आपके घर में कोई हालात नहीं है, आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, आपके घर में एक वक्त का फाका नहीं आया और आपके घर में कोई बीमारी नहीं आई, तो मैं ये सोच रही थी कि हालात और परेशानी, बीमारियां और फाके तो मोमिन के घर आते हैं, कहीं मेरा निकाह मुनाफिक से तो नहीं हो गया। मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मालदार करो, ऐसा बड़ा मकान हो, ऐसी अच्छी सवारी हो, ये बुनियाद नहीं है मोमिनों की। कितनी मेहनत हुई होगी और घरों की तालीम का क्या मेयार होगा मेरे भाइयों। एक बच्ची निकाह के बाद में खुशगवार जिंदगी में ये सोच रही है कि कहीं मेरा निकाह मुनाफिक से तो नहीं हो गया, इसके यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई मुसीबत नहीं। ये पापा तो मोमिनों के यहां आते हैं और पापा और जो परेशानियां तो मोमिनों के यहां आती है। कहीं मेरा निकाह मुनाफिक से तो नहीं हो गया और मैं इसके साथ साथ मेरी भी आखिरत का मसला ना हो जाए, इसलिए वो कह रही है कि मैं इसलिए देख रही थी कि आपके यहां तो राहत ही राहत है, परेशानी तो नहीं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश तैयार करना चाहती थी। लेकिन जब आप घर से चले और आपके पैर में चोट आई और एक मुसीबत आई तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि मेरा शौहर मुनाफिक नहीं मोमिन है, इसलिए तलाक नहीं चाहिए। ईमान ये घर की तालीम है ना मेरे भाइयों, ये रस्मी तालीम नहीं है। हाँ बरकतन नहीं है, बरकतन बरकत के लिए तालीम नहीं करनी है। बड़े भूख लगी थी, वापस घर आए थे, बीबी खाना गर्म कर रही थी, बच्ची को हमने कह दिया, बच्चे को कह दिया बेटा थोड़ा तालीम कर लो। बच्चा बेचारा अटकता हुआ रुकता हुआ पढ़ता रहा, एक हदीस पढ़ी, अंदर से बीवी ने किचन में से आवाज दी, खाना गर्म हो गया, बच्चे को बस बस बेटा बस बंद कर दो। ये तालीम हमारे घर कभी नहीं, दीन का काम कभी दुनिया की रियायत के साथ नहीं होता, दीन का काम तो कुर्बानी से होता है। इसलिए हजरत भाई इब्राहिम साहब देवला दावत बरकातुह फरमाते हैं, हमारा काम कुर्बानी का है, चालाकी का नहीं है। ये चालाकियों का काम नहीं है तो कुर्बानियों का काम है, और ये जान बचाने का नहीं है, जान खपाने का है। घर की तालीम दुनिया की रियायत के साथ होगी, कयामत तक होगी, घर का बातिल नहीं टूटेगा। घर का बातिल जब टूटेगा जब घर की तालीम कुर्बानी के साथ हो। भूख लगी है अपनी बीवी से भी कहो कि अभी खाना नहीं खाना, पहले हम तालीम करेंगे। वक्त तय हो, जगह तय हो, बात साफ कपड़ा बिछाया जाए, इसको अमल बनाओ। हमारे पढ़ेंगे घर की तालीम तो अमल है, इसको अमल बनाओ, हमने इसको रसम बनाया है। और भाई बहन साहब फरमाते जब कोई काम रसम में आता है तो वो बेजान हो जाता है, उसकी हकीकत खत्म हो जाती है। और घर की तालीम मेरे भाइयों, इसमें ये जो सात किताबें हैं, हिकायत साहबा, फजाइल नमाज, फजाइल जिक्र, फजाइल कुरान, फजाइल तबलीग, मौजूदा बस्ती का वाहिद इलाज, फजाइल सदका, फजाइल रमजान और हज मौसम के, मेरे भाइयों ये किताबों के अंदर से रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फजाइल नमाज पढ़ी तो तीन महीने तक फजाइल नमाज पढ़ है, फजाइल जिक्र पढ़ा चार महीने तक फजाइल जिक्र पढ़ा जाए, ये तरतीब नहीं है। घर की तालीम की तरतीब अपने बड़ों से सीखे, नमाजों में जाते हैं उसको सीख कर आए, अपने घर वालों को तालीम की तरतीब सिखाए, आने वाली मुस्कुराहट की जमातों को अपने घरों में ठहराए, और अपनी औरतों से कहे कि आने वाली मुस्कुराहट की जमात से घर की तालीम की तरतीब सीखे। सहाबा का यकीन, सहाबा का ईमान, सहाबा की नमाजें, सहाबा का दीन सीखने का शौक, सहाबा का अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह का खौफ, सहाबा के अखलाक इशार हमदर्दी के जज्बे, सहाबा की औरतों के बच्चों के दीन सीखने के जज्बे, और सहाबा की नीयतें और सहाबा के जानमाल लगाने के जज्बे, एक एक बात अंदर है मेरे भाइयों। और ये चाहा जा रहा है कि घर की तालीम के जरिए से हमारे घर की बड़ी उम्र की औरतें अपनी जिंदगियों का आइडिया नमूना अजवाज मुताहरात को बनाए, उम्मातुल मोमिनीन को अपनी जिंदगी का आइडिया और नमूना बनाए। ये माँ अलिया रजी अल्लाह तआलाना और माँ आयशा रजी अल्लाह तआलाना की जिंदगियों को अपनी जिंदगियों का आइडिया और नमूना बना के चले। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआलाना ने कैसे मान लगाया अल्लाह के नबी के दीन पर और कितना साथ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे घर की औरतें अजमा ने उतारा तो अपनी जिंदगी का आइडियल नमूना बनाए और हमारी जवान बच्चियां बनाते ताहिरात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अपनी जिंदगी का आइडियल नमूना बनाए।
हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने कैसी कुर्बानी दी,
हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला ने कैसी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कैसी कुर्बानी दी। हमारी बेटियां बनाते ताहिरात को नमूना बनाए और हमारे घर की औरतें घर की तालीम के जरिए से दीन के उस मेयार पे आए कि ये शादी ब्याहों के मौके पर और शामियानों में जब भी जाने का मौका आवे तो हमारे घर की औरतें दो लुकमे के लिए अपनी हया और शर्म को न लुटावे। भूखी आ जाए वो अपनी हया को न लुटाए। क्या करें, वहां सारे मर्द थे, मर्द ही खिला रहे थे और नकाब उठा के खाना। अरे मेरे भाइयों, हमने कभी अपने घर की तालीम में अपनी जात को शरीक किया? मेरे भाइयों, चिल्ले के लिए जाते दस साथी पर मेहनत करते हैं, चार महीने के लिए जाते दस साथी पर मेहनत करते, इलाकों पर मेहनत करते, बस्तियों पर मेहनत करते हैं। एक तबका हमारे घर में है, एक मजमा हमारे घर में है, जिनकी जिम्मेदारी हमें कुरान के जरिए से जो सुनाई गई है उनकी जिंदगी में दीन आना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई घर की तालीम तबलीग का कोर्स नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी कि हमारे हलोया को जहन्नम की आग से बचाए, अच्छा तरीका तालीम करे, उनकी जिंदगी में हमारे सवाले आए, उनकी जिंदगी में आखिरत का यकीन आए, ये हमारी जिम्मेदारी मेरे भाइयों। लेकिन हम सोचे कि जितना मैं चिल्लों में निकल कर अपने साथी पर मेहनत करता हूँ और चार चार महीने में निकल कर मैं इलाकों में और बस्ती में मेहनत करता हूँ, क्या कभी मेरे घर में अपने घर के बच्चियों को बिठाकर, अपनी औरत को बिठाकर, अपनी माँ को बिठाकर मेरे घर की तालीम में इतनी जहद, इतनी दिलचस्पी ली है मैंने? तभी उनको सहाबा की कुर्बानियां सुनाई। आज मुसलमान तस्करे करा, मुसलमान बच्चियों ने ये कदम उठा लिया, मुसलमान बच्चियों ने ये कदम उठा लिया। तो मुसलमान बच्चियों ने कदम क्यों उठाया? मुसलमान बच्ची के पास ईमान नहीं है? ईमान तो है, लेकिन बताने के ईमान पर क्या मिलेगा? इसे ईमान के पता ही नहीं पता, इसे कलमे के पता ही नहीं पता, इसे जन्नत जन्नत की जिंदगी का इसे पता नहीं है, इसे जन्नत सुनिए जन्नत क्या है इसे पता नहीं है। ये सोने जाति की जन्नत कभी जाती है, ये तो मिट्टी के मकानों को जाती है। इसलिए इसमें ईमान के मुकाबले में दुनिया के मिट्टी के मकान को पसंद कर दिया, दो चार दिन के खाने को पसंद कर दिया, कैंटीन और कॉलेज के हॉस्टल और हॉस्टल और कॉलेज के कैंटीन के अंदर इसने पढ़ाए बच्चों के साथ थोड़े से
भजिए, थोड़ा सा पाव और थोड़ी सी पेप्सी और थोड़ी सी चाय पर
अपने ईमान को बेच दिया। क्यों? इसे पता नहीं है कि ईमान पर क्या मिलेगा।
जन्नत किसे कहते हैं, आखिरत किसे कहते हैं, कबर किसे कहते हैं, सकरात का आलम क्या होता है, हिसाब का दिन क्या होता है, इसे पता नहीं है। इनकी तालीम है। सहाबा का दिन का वक्त 24 घंटे तीन हिस्सों में तकसीम होता था। एक हिस्सा हलाल रोजी के कमाने में सहाबा लगाते थे, एक हिस्सा सहाबा लगाते थे अपने घर की, अपने बच्चों की, बीवी की दीनी तरबियत में लगाते थे, और एक हिस्सा सहाबा का मस्जिदों में लगता था। आज मेरे भाइयों, निजामुल औकात नहीं हमारे पास, हम घर में खाने और सोने के लिए जाते हैं, हमने अपने घरों को होटल बनाया है। माफ करना, होटल में आदमी खाने जाता है, सोने जाता है, इतने बजे जाते हैं कि घर में बच्चे सो जाते हैं, हम सोते रहते हैं, बच्चे उठ के मदरसे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद अपनी बीवियों के घर जाते थे। बारी अलग अलग होती थी रात की, लेकिन असर के बाद हर बीवी के घर पे मुलाकात के लिए जाते थे। और ये भी था मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो चांद तक जो है चूल्हा नहीं जला, तीन चांद हुए चूल्हा नहीं जला। तो नऊज बिल्ला, अल्लाह के नबी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते थे। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को साल भर का खर्चा देते थे, एक साल का नफका देते थे। लेकिन मेरे भाइयों, घर की तालीम का और घर की मेहनत का ये हाल था। हमारी माएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात आखिरत के बारे में इतना सुनती थी और दीन के तकाज़े इतने मुकद्दम थे उनके आगे कि वो अपने साल भर का खर्चा अल्लाह के दीन पर ही लुटा देती थी।
बाहर का डॉक्टर अपनी आखिर की तैयारी में लगा देती थी। आपने इस किताब में सुना होगा 80,000 दिरहम है। अमीजा आयशा रजी अल्लाह तआला ना खुद रोजे से है, खादिमा से कहा कि जरूरतमंदों में तकसीम कर दे। शाम और इफ्तार के वक्त में खादिमा कहने लगी अमीजा एक दिरहम का गोश्त ही मंगा लेती तो आज हम गोश्त इफ्तार कर लेते। अमीजा कहने लगे कि अब याद दिलाने से क्या फायदा, उस वक्त याद दिलाती तो गोश्त मंगा लेते। इतना एहसास है, अपनी जरूरत का ख्याल भी नहीं है। आज हमारे घर में कपड़ों की, अपने घरों के अंदर मेरे भाई कभी अपनी बच्चियों के अपनी बीवी के कपड़े निकालो और देखो कितनी जोड़ी कपड़े हैं, पूरे कबाड़ और अलमारियां कपड़ों से भरी हुई है, फिर भी कपड़ों की शिकायत है, फिर भी कपड़ों के लिए झगड़े हैं। बर्तन देखो, कपड़े देखो, चीजें देखो, देवर देखो, चप्पलें देखो, अपने मकानों में कितना माल लग रहा है, अपनी सवारियों में कितना माल लग रहा है, अपनी शादियों में कितना माल लग रहा है, अपने खानों में कितना माल लग रहा है, अपने मेरे भाइयों अपने 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 कपड़ों में कितना माल लग रहा। इंसानी अहम जरूरतें पांच उलमाने और बुखारे लिखी है कि कपड़े इंसान की अहम तरीन जरूरत है, खाने इंसान की अहम तरीन जरूरत है, मकान इंसान की अहम तरीन जरूरत है, सवारी इंसान की अहम तरीन जरूरत है, शादी इंसान की अहम तरीन जरूरत है। ये पांचों इंसान की अहम तरीन जरूरतों में सहाबा ने इन जरूरतों को अपने माल को कितना लगाया। घर की तालीम के जरिए से हमारा मैयार नीचे आए, ये चाह जा रहा है। आज मेरे भाइयों दीन के तकाजों में जो रुकावटें बनी घर की औरतें और दीन के तकाजों में जो रुकावटें बने हमारे इखराजात, हमारे खर्चे ये दीन के तकाजों के पूरा होने में रुकावट बने हैं। इसलिए कि हमने घर की तालीम को तालीम नहीं बनाई है और मस्जिद की तालीम को हमने अमल नहीं बनाया है। मस्जिद की तालीम के जरिए से हम अपनी जिंदगी का आयोजन और नमूना हजरत सहाबा को बनाए। और इतने खत्ताब, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, सिद्दीक अकबर, बिलाल हमशी, अबू ज़र गफारी, ये सहाबा मेरे भाइयों, अब्दुल रहमान इब्न औफ, अशरे मुबशरा, सवाला सहाबा की जिंदगियां मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के लिए आइडियल नमूना है। ये तालीम के रास्ते से हम अपनी जिंदगी का आइडियल नमूना बनाए। मैं ताजिर हूं तो अब्दुल रहमान इब्न औफ की तरह बनू, मैं गरीब हूं तो ये गरीब सहाबा की तरह मेरी जिंदगी हो। हाकिमों को देखो मेरे भाइयों, कुर्सी पर बैठकर 22 लाख मुरब्बा मील तक अल्लाह के दीन की बात को पहुंचाने वाले अब अरे तुम्हारे फारूक रजी अल्लाह तआला की जिंदगी का क्या मेयार है। शुरफा साहब आए हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला आपकी जिंदगी को देखा, एक साथी आपके साथ खाने में शरीक हुआ, खाना इतना मोटा था कि निकला नहीं जा रहा है। उम्मातुल मोमिनीन है अफसर रजी अल्लाह तआला है, ये साहबा अम्मीजान के पास पर्दे की हालत में जाकर अर्ज करने लगे कि अम्मीजान अब तो माशाल्लाह फुतुहात की कसरत हो गई और इस्लाम के बहुत सारे आमिर पैदा हो गए, अमीर मोमिनीन से हमारे नाम मालूम न हो, आप थोड़ी सी दरखास्त कर दें कि वो आप मेरे छने और आटे की रोटी खा लिया करें और अपने काम के लिए थोड़ा सा गुलाम मुकर्रर कर लें और कुछ कपड़े ऐसे नए बना लें कुछ साफ सुथरे जिसके जब वफूद आने के ऊपर उन कपड़े पहनकर अमीर मोमिनीन बजाय पेमन वाले कपड़ों के कुछ साफ सुथरे कपड़ों से जो उनसे बातचीत कर ले और बैतुलमाल से अपना कुछ वजीफा पढ़ा ले। आज दुनिया में किसके झगड़े चल रहे, हमारा पगार बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा खर्चा बढ़ाओ। घर में जाते हैं तो औरतें कहते हैं खर्चा बढ़ाओ, ऑफिस में जाते हैं तो हमारे नौकर कहते हैं हमारा पगार बढ़ाओ, ऐसे होता है ना। ये है ना, ताजिर हम और हमारे यहां तो मुलाजिम है तो क्या कहता है कल से नहीं आऊंगा, क्या हुआ भाई, और मैं अभी में जिधर मैं आपके यहां 10,000 है, मुझे 12,000 की जगह दूसरी एक नौकरी मिल रही, अगर आप तनख्वाह बढ़ा दो तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। सब यही कह रहे हैं, वहां पर छुपके कहा जा रहा है, नाम पता न चले, अमीर मोमिनीन से कहे कि भाई वजीफा बढ़ा लगे 22 लाख मुरब्बा मील, कितनी बड़ी मेरे भाई सोचे हम उलमा से पूछे 22 लाख, 3 बर्रे आजम पर इसके खिलाफत और हुकूमत चल रही है, उसके घर के अंदर खाने का ही आदत है, उसके कपड़ों का ही आना। हजरत साहब रजी अल्लाह तआला ने कहने लगी कि अल्लाह अब्बा जान आए, अरे तुम्हारे रजी अल्लाह तआला, मैंने जो है मौका पाकर कहा कि अब्बा जान अब तो माशाल्लाह इस्लाम के हामी हो गए, आप छने हुए आटे की भी रोटी खा सकते हैं और आप जो है बगैर पेमेंट वाले यानी थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के भी मुकुद से बात कर सकते हैं, अपने कुछ कामों के लिए गुलाम को भी मुकर कर सकते हैं, बैतुल माल भी अल्लाह ताला ने काफी बरकत है, इतना फरमा इतना वजीफा भी पढ़ा सकते हैं। भाई तुम्हारे रजी अल्लाह तआला के तेवर बदल गए, अल्लाह के नबी इस्लाम की जिंदगी से मेरे से ज्यादा तू वाकिफ है, बता तेरे घर में अल्लाह के नबी का सबसे अच्छा खाना क्या था। हमसा रजी अल्लाह तआला ना अमीजान कहने लगे कि हमने गर्म रोटी पर एक मरतबा घी के डब्बे की कल्चर को उलट दिया तो उस रोटी के ऊपर लगा हुआ घी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मजे से नोश बना हमें भी खिलाया। फिर कहा कि हमसा तेरे घर में नबी का बिस्तर कहता था, एक मरतबा चार घड़ी करके बिछा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा हमसा रात में क्या बिछा दिया था, बहुत नरम हुआ और जिसकी नरमी की वजह से रात में उठना मेरे लिए मुश्किल हो गया, उसे दौड़ा करते दो कड़ी करते ताकि रात में उठना आसान हो। युका रजी अल्लाह तआला ना कहने लगे कि अल्लाह के नबी की जिंदगी को याद दिलाया और इतना रुलाया, खुद भी रोए मुझे भी रुलाया और फरमाने लगे हमसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का इतना वो तरीका सिखाया है, अगर हम नबी की जिंदगी के तर्ज के मुताबिक चलेंगे, सिद्दीक अकबर चले तो मस्जिद मंसूर तक पहुंच गए, उमर फारूक ने चलना शुरू किया है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तर्ज के आपकी जिंदगी के तर्ज से हटकर अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो मैं मंजिल तक मंजिल मकसूद से भटक जाऊंगा। कहा इतना रोए खुद भी रोए मुझे भी रुलाया और कहने लगे हमसा अगर उन लोगों के नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता। आज मेरे भाइयों हमारे दस्तरखान में कितने साल आ गए, सोचे हम ये नहीं कहते एक साल से खाए, लेकिन मेरे भाई और नेमतें आती जा रही है, नाशुक्री बढ़ती जा रही है। आप इस मेहनत के दर इस मेहनत से मौलाना फरीद साहब ने जुमला सुनाया, इस मेहनत से नहरों में ये नहीं है कि आदमी को छिलने की तौफीक नहीं मिले, तीन दिन की तौफीक नहीं मिले, चार महीने की तौफीक नहीं मिले, गश्तों की तौफीक नहीं मिले, इस मेहनत से नहरों में ये नहीं है, इस मेहनत से नहरों में ये है कि आदमी काम कर रहा हो, कष्ट कर रहा हो, चिल्ला लगा रहा हो, तीन दिन लगा रहा हो, लेकिन काम का जो खासा है कि काम का खासा क्या है कि हमारा ईमान सहाबा के मेयार पे आवे, हमारी जिंदगी सहाबा के मेयार पे आवे, हमारा ताल्लुक मोहल्ला सहाबा के मेयार पे आवे, हमारा अखलाक सहाबा के मेयार पे आवे। यूं कहा कि जो काम का जो खासा था, काम का जो नफा था कि हमारे अंदर अल्लाह से ताल्लुक बढ़ रहा हो, हमारे अंदर तनाव आ रही हो, हमारे अंदर सब्र आ रहा हो, हमारे अंदर शुक्र आ रहा हो, हमारे अंदर जहद आ रहा हो, हमारे अंदर तकवा आ रहा हो, मेरे भाइयों इस तिफात से हमारी जिंदगी खाली हो, हम काम कर रहे हैं लेकिन काम का नफा हमें नहीं हो रहा, ये भी काम से लहर होगी, अल्लाह हमारी हिफाजत कर। इसलिए काम का नफा जब होगा, जब काम को मेरे भाइयों कुर्बानी से किया जाए, अपना हफ्ता और इकश दुनिया की रियायत के साथ नहीं, तिजारत के कोई काम के लिए कोई बड़ी पार्टी आ गई ना उससे मीटिंग है और मेरा गश्त आगे पीछे हो गया, जब भी मेरे भाइयों ये दुनिया की रियायत के साथ गश्त किया जाएगा, इस गश्त के ऊपर कभी हमारा यकीन नहीं बनेगा, गश्त हो जाएगा, जमात बन गई, जमात चली गई गश्त में, हम जो अपनी तिजारत का काम पूरा करके मस्जिद को आज दरमियानी बात चालू थी, हम भेड़ के दरमियानी बात में या एक साथी को लेकर मुलाकात में चले गए, हमारे दिल को तसल्ली हो गई कि हमने गश्त कर लिया, लेकिन मेरे भाइयों दुनिया की रियायत के साथ गश्त हुआ, दुनिया की रियायत के साथ दीन का काम किया जाएगा, दिल का बातिल नहीं टूटेगा, अंदर का बातिल नहीं टूटेगा, घरों का बातिल नहीं टूटेगा। ये तो दुनिया का काम जैसे कुर्बानी से किया जाता है तो उनका नफा होता है, ऐसे मेरे भाइयों दीन का काम कुर्बानी के साथ किया जावे, हमारे काम का जुज्व आजमी कुर्बानी, और जब कुर्बानी के साथ करेंगे तो सिफात आएंगे और सिफात आएंगे तो सिफात अपनी बरकतें जाहिर करें। कुर्बानी के साथ गश्त होगा पहला गश्त, कुर्बानी के साथ दूसरा गश्त होगा, तो कुर्बानी के साथ गश्त होगा तो तकवा आएगा, अल्लाह का खौफ आएगा, परहेजगारी आएगी,
حرام سے بچنا آسان ہوگا، حلال میں زندگی آئے گی، اور تقوی پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دمشق ہے دمشق، دمشق آج کا ملک شام، اس زمانے میں اردن، لبنان اور فلسطین اور شام کے چار ملکوں کا ملک شام تھا. دمشق کے اندر ایک کھلا میدان تھا جو کسی زمانے میں خرافات کا اڈا تھا، گناہوں کا مرکز تھا. اللہ کی شان کے نیک دن بادشاہ جب آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے ذاتی مال سے اس جگہ کو خریدا، سارے خرافات وہاں بند کیے اور اس جگہ پر ایک مسجد کو قائم کیا اور اس مسجد کا نام رکھا جامع توبہ. بھائی تھوڑا بیٹھو، اپنے آپ کو بٹھاؤ، انشاءاللہ بس چار بجے سے پہلے ہماری ترتیب بن جائے گی. اس مسجد کا نام لکھا جامع توبہ. توبہ یعنی توبہ والی مسجد، اور اس نے مسجد کے اندر الگ الگ کمرے بنوائے. اس زمانے میں دمشق جو ہے نا وہ علم کا مرکز بھی تھا، اور لوگ اپنے بچوں کو حدیث کے علم کے لیے دمشق بھیجتے تھے، اور اس زمانے میں بچوں کے رہنے کے لیے اس نے کمرے بنا دیے. کوئی خاص نظام نہیں تھا بچوں کے کھانے کا، مسجد میں اہل اللہ آتے تھے، بچے آ کر حدیث کا درس لیتے تھے. جو ہمارے سامنے جو فضائل اعمال 84 کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ بڑی قربانی کے ساتھ لکھی گئی ہے. یہ جتنی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، حدیث کی کتابیں اہل اللہ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ لکھی ہے. اس لیے دین تنپروری سے نہیں آتا، دین تو خاکساری سے آتا ہے. ہاں دین تو قربانی سے آتا ہے، یہ قربانیوں کا دین ہم تک آیا ہے. آج کل ہمارا مزاج کیا پتا ہے؟ کم سے کم مال لگے، کم سے کم جان لگے، کم سے کم وقت لگے اور دین کا کام ہو جائے. بھائی کیا کرو، اجتماع کی دعوت موبائل پر پہنچا دو، واٹس ایپ پر سینڈ کر دو. سینڈ تو میں نہیں، یہ بنایا اجتماع کا پورا ہم نے پروگرام بنا دیا اور سینڈ تو میں نہیں، 200 کو پہنچ گیا، 400 کو پہنچ گیا. ایسے اجتماع کی دعوت نہیں پہنچتی، اجتماع کی دعوت تو سینہ بر سینہ ہے. اس میں چل کر جانا ہے، اپنی بھوک آگے پیچھے، اپنا کھانا آگے پیچھے، اپنی نیند آگے پیچھے، اپنی تجارت آگے پیچھے. اس قربانی کے ساتھ پہ جائیں گے اپنے بھائیوں کے پاس، یہ قربانی کے اثرات ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی مرتبہ آتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانیوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے چھلانگ لگا کر مارنا پسند کر لیا تھا، اور سمندروں کے اندر ڈوبنا پسند کر لیا تھا، جان دے دینا پسند کر لیا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنا ہمارے گوارا نہیں تھا، لیکن نبی اتنی قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے کہ گویا کہ نبی کا کلمہ ہمارے سینے کو چاک کر کے، ہمارے دلوں کو چاک کر کے اندر زبردستی اتارا گیا، ہمارے دلوں میں دین کو ڈالا گیا. قسم کھانے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کام کی محبت ڈالے اگر قربانی کے ساتھ ہمارا کام ہوگا. جشن قربانی کے ساتھ، روزانہ کی ملاقاتیں قربانی کے ساتھ، 3 دن ہمارے قربانی کے ساتھ، پھر علاقوں میں ہدایت کی ربانی لہریں چلے گی. تو قربانی سے دین آیا. بچے کمروں کے اندر حدیث کا درس لیتے تھے، مسجد میں آتے تھے، اہل اللہ حدیث سناتے تھے، حدیث کا درس لیتے تھے، بچے چلے جاتے تھے. ایک بچہ حدیث کا درس لیتا تھا، اس کا روٹی کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، 3 دن کا فاقہ ہو گیا، بچہ منہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. پہلی مرتبہ مسجد کے کمرے سے نکلا محلے میں، اگر لقمہ نہیں ملا تو مر جاؤں، ہلاکت کے قریب ہو گیا. مسجد سے نکل کر محلے میں، اور محلے کی پیچھے کی گلی میں چل رہا تھا، مکانوں کے پیچھے کا حصہ تھا، ایک مکان میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی،
ताजा खाना बना हुआ था, खुशबू आ रही। वो खुशबू को उसने जब महसूस किया, उस घर के पास खड़ा हो गया। छोटी सी दीवार थी, उसने हिम्मत करके दीवार को उबूर किया और उस मकान के पीछे के हिस्से में दाखिल हुआ। तो पीछे के हिस्से में किचन था, किचन में खाना बना हुआ बर्तन ताजा, उसके ऊपर जो है बर्तन को हटाया तो अंदर से खुशबू आने लगी, ताजी सब्जी बनी हुई थी। भूख इतनी शिद्दत की थी, गरम गरम खाना था, अंदर से उसने निकाला बैगन और निकाल करके दांत में इसने चबाने के लिए दबा भी लिया, लेकिन अंदर से उसके ईमान ने पुकारा, ये तू कौन है, चोरी करके खाता है, चोरी करके खाना खाएगा, तेरा जिस्म माल हराम से परवरिश पाएगा, तेरे सीने में कुरान है, तेरे सीने में हदीस का नूर है, तू किस लिए गलती में आया है, और तेरे सीने का हदीस का नूर चला जाएगा। मेहनत करते करते दिल ऐसा बन जाए, जब गुनाह सामने आ गया तो अंदर का ईमान हमें ललकार है, तू क्या देख रहा है। रात में सोते हुए एक आदत बन चुकी है मेरे भाई और हमारी, जब तक मोबाइल के मैसेज देखते नहीं तब तक नींद नहीं आती, मौत पर खतरात पर क्या होगा। फजर में उठते ही पहले मोबाइल के मैसेज देखते हैं। इस काम के जरिए मेरे भाई और तरबियत छाई जा रही, तरबियत इसलिए आज वैसा कहते हैं तकवा नाम है एहतियात का, देखने में एहतियात, बोलने में एहतियात, सुनने में, हमारी जिंदगी एहतियात पर आवे, एहतियात कर देगी, न बोलने में न सुनने में न जागने में न सोने में न बातों में न खाने में, सब में हमारी जिंदगी गैर एहतियात के साथ चल रही। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इसलिए मेरे भाइयों, काम करते करते, रोजाना का मशवरा करते करते, रोजाना की मुलाकातें करते करते, अपने हफ्ते के जश्नों को करते करते, माहाना तीन दिन लगाते लगाते, और जिंदगी में अल्लाह ताला मौका देवे तो बार बार चार चार महीने लगाकर, मेरे भाइयों हमारी जिंदगी तकवे पर आवे, एहतियात पर आवे, हमारी जिंदगी फिक्र आखिरत पर आ रहे, जन्नत और जहन्नम के यकीन पर आ रहे, कब्र हशर के यकीन पर आ रहे, उस बच्चे के अंदर के ईमान ने उसको ललकारा। भूख बड़ी शिद्दत की थी, दो दांत के बीच में सब्जी को दबा भी लिया, लेकिन अंदर के ईमान ने उसको ललकारा, पुकारा, आवाज लगाई, तो उसने दांत के बीच में से उस सब्जी को लेकर के वापस बर्तन में डाल दिया, उसने बर्तन का मुंह बंद कर दिया, फिर जो है दीवार उबूर करके मस्जिद को आ गया, मस्जिद में आकर सजदे में गिर गया, झुटकियां मारकर आंसू रहा है, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर में तेरे नबी की हदीस का दर्द लेता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी हालत तो तू ही जानता है, मैं तीन दिन का भूखा हूँ, मेरे मौला तू मेरा राजिक है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, खाना तू सबको खिलाता है, अल्लाह तूने मुझे हराम खाने से बचाया, वहां से वापस लाया है, तेरी इज्जत की कसम आज के बाद तेरे दर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तेरे दर के सिवा किसी से नहीं मांगूंगा, आज से अल्लाह को पैमान करता हूँ, खाऊंगा तो हलाल खाऊंगा वरना भूखा मरूंगा, कभी हराम नहीं खाऊंगा। कष्टों के बाद दुआएं कबूल होती, हम लोग कष्टों के बाद चाय पीने चले जाते, कुर्बानी के साथ कष्ट किया, दुआ में लगो, हमारा हाल तो ये है कि जब दुआ में लगा ना उसको भी उठा देते, चलो भाई कष्ट में जब अल्लाह वापस आगे हुआ, अरे उसको तो नहीं उठाना, हमको भी अब दुआ में लगना है, हम भी जल्दी से फारिग होकर दुआ में लगे, चाय पीने का वक्त नहीं है ये, दो नमाजों के बीच का वक्त फारिग हुआ है, अब अल्लाह से मांगने का वक्त, ये कबूलियत का वक्त, कष्टों के बाद की दुआ अल्लाह वालों का तजुर्बा है, इतना मुचर्रब अमल है मेरे भाइयों, जो मान और हुकूमत और ताकतों से जो काम नहीं होते थे, कष्टों के बाद की दुआओं से वो काम हुए। भाई अब्दुल राम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक नौजवान आया और बेकसूर था और उस पर फांसी की सजा लग गई और वो बच्चा थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेकर आया था, हजरत के पास दुआ के लिए, हजरत ने कहा तेरे मोहल्ले का घर से गश करो दुआ मांग, कहने लगा हजरत की बात माना, गश किया दुआ मांगी, अल्लाह ताला दुआ की बरकत से इंसाफ दिलाया और अल्लाह ताला इतनी बड़ी सजा से बचा लिया, अल्लाह ने यकीन अता फरमाया। दश के दिन तो इधर उधर की बात नहीं मेरे भाइयों, بڑے سے بڑا تقاضا کیوں ہو، دنیا کا بڑے سے بڑے نفع کا کام کیوں ہو. آج میں نے گشتہ دیا، جس نماز کے بعد گشتے اس نماز کو پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا، پیچھے نہیں جانا. ہم پیچھے نہیں رہیں گے، گشت کے دن آگے آگے رہیں گے، پیش پیش رہیں گے. متقلی وہ بنے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، رہبر وہ بنے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، امیر وہ بنے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، درمیانی بات وہ کرے گا جو اللہ نے طے کیا ہے. میرے ذمہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ بیماری کے عالم میں اپنے گشتوں کو پابندی سے کرنے والا، ایک مرتبہ وہ اپنے کاروبار میں سے آیا گشت کا دن اور بخار جیسا اسے محسوس ہونے لگا، نماز کے بعد گھر چلا گیا، گھر میں تعلیم کا حلقہ، گھر میں جماعتوں کا آنا جانا، مستورات کی اس کی گھر والی کا اچھا وقت لگ رہا ہے. وہ گھر والی نے دیکھا کہ آج گشت کا دن ہے اور میرے گھر والے تو میرے حضرت جی تو گھر میں ہی ہے. کس کی بیوی اس کے شوہر کو حضرت جی کے دیے بتاؤ؟ بات تو سب امیر صاحب امیر صاحب کرتے ہیں، بات تو سب حضرت جی ہم کو کرتے ہیں، اپنی گھر والی ہم کو کیا کہتی. ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس ہو رہے تھے نا، ایک اللہ والے کہنے لگے تمہارا سفر قبول ہو گیا، اس کی علامت یہ کہ تمہاری گھر والی تم کو حضرت جی کہنے لگے، کہ تمہاری ولادت وہ قبول کرے تب جا کے تمہارا سفر قبول ہوا. لوگ تو سب بڑا نیک سمجھتے لیکن وہ جانتی ہے. اب بڑا نیک مرد بڑی نیک خاتون دیکھا کہ آج گشت کا دن ہے، میرے گھر والے گھر میں آ گئے، کبھی نہیں آتے، کیا بات ہے آج طبیعت ٹھیک نہیں. جلدی سے اپنے شوہر کی خدمت کی، چائے گرم گرم بنائی، اچھی پکا کے لائی، ناشتہ لائی، تھوڑا سا ناشتہ کرائی، چائے پلائی، خدمت کر دی، تھوڑا ٹیبلٹ کھلا دیا. ابھی کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا کبھی گشت آگے پیچھے نہیں ہوا. تھوڑی ہمت کر کے چلے جاؤ، امیر صاحب سے کہنا کہ آج گشت میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے مسجد میں بٹھا رکھنا. کوئی بات نہیں، اپنی بیوی پر چلے گئے وہ مسجد میں، مسجد کے اندر ابھی گشت کے آداب ہو رہے تھے، پہنچ گئے. امیر صاحب سے کہہ دیا، امیر صاحب آج ہمت نہیں کہ آج محلے میں گشت کے لے جاؤں. تو امیر صاحب نے ہٹ کے آج ذکر دعا میں دعا ذکر دے ذکر دعا میں تھا، دعا مانگتے رہا اللہ کا بندہ. تھوڑی دیر کے بعد ذکر شروع کیا، ذکر کرتے ہوئے آگ لگ گئی. آگ لگی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اللہ مبو میں اپنی بیوی کو ہمارا سلام کہنا، اس نے تجھے تیار کر کے ہماری محنت کے لیے بھیجا، اس اللہ کی بندی کی قربانی پہ تو گشت میں آیا ہے، اس کو ہمارا جا کر سلام کہہ دے. یہ کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کام کو نہیں پہچانا. گشت کے دن ہم چالاکی کر لیتے، نیت کرو انشاءاللہ موت تک ہم آج کے بعد کبھی گشت ہمارا آگے پیچھے نہیں ہوگا، پابندی سے کریں گے انشاءاللہ، دوسرا گشت بھی کریں گے پابندی سے. وہ نوجوان اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ آج کے بعد تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. خیر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد حدیث کا درس شروع ہوا. کہنے لگا بھوک اتنی ہے، حضرت کچھ پڑھا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کیا کروں، میں نے اللہ سے عہد و پیمان کر لیے کچھ نہیں کھاؤں گا، حرام تو نہیں کھاؤں گا، مر سکتا ہوں لیکن کبھی جہنم کے آگ کے ٹکڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا. جب حدیث کا درس پورا ہوا تو کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں خاتون مسجد کے اندر آئی، اچھی طرح چادر میں لپٹی ہوئی، ہاتھ کے دستانے ہیں، پیروں کے موزے ہیں. آ کر حضرت سے تھوڑا دور کھڑی لے کر وہ کچھ کہہ رہی تھی، مجھے سنائی نہیں دیا. حضرت مسجد میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے، حضرت کی نگاہ میرے پہ پڑ گئی. میں دلی دن پہ سوچنے لگا کہ شاید میری چوری پکڑا گیا، یا اللہ تو معاف کر دے اور تو میری عزت بچا لے. حضرت نے کہا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا استاد محترم نے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور کہا بیٹا تم نے نکاح کر لیا؟ کہ نہیں میرا نکاح نہیں ہوا. حضرت میں غریب آدمی، میرے پاس میں ایک وقت کا کھانے کا نہیں روٹی نہیں، میرے سے نکاح کون کرے گا؟ حضرت نے کہا کہ دیکھ بیٹا، اس محلے کی یہ شریف خاتون ہے، اس کا شوہر انتقال فرما کے اس کی عزت پوری ہو گئی، یہ بڑی شریفہ ہے، نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کے شوہر نے مکان چھوڑا ہے، کچھ پیسے بھی چھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں بیٹا تو اس سے نکاح کر. حضرت میرے پاس مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں. کہا کہ تیرا مہر میں عطا کروں گا، اس بچی سے نکاح کر. اس سے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا طالب علم ہے، بڑا نیک ہے، بیٹا میری رائے سے اس سے نکاح کر لے، اللہ تیرے ایمان کی حفاظت کر لے. تو اسے بلایا اور پھر بچی سے کہا کہ تمہارے چچا کہاں ہے؟ کہ بولے مسجد کے باہر ہے، بلا لو. اس بچی کے حقیقی چچا تھے، ان کو وکیل بنایا. حضرت نے خود نکاح کے لیے محلے سے دو گواہ بلایا، اپنے پاس سے مہر ادا کی اور اس کا نکاح پڑھا دیا. اور بچے سے کہا کہ جاؤ، آج سے تمہارا نکاح ہو گیا، یہ تمہاری بیوی ہے، ان کے گھر پہ جا کر वहीं से आप हदीस का दर्स लेने के लिए वो कहने लगा एक वक्त का खाना नहीं था, अल्लाह ने बीवी दी, मकान दिया, अल्लाह की क्या शान है, कभी आसमान को देखता, कभी आंखों में आंसू होते, घर में दाखिल हुए और मैं सोच रहा था कि एक शादीशुदा भी औरत के साथ में हजरत ने मेरा निकाह करा दिया, चलो कोई बात नहीं, कैसी होगी कैसी नहीं मैं तो नहीं जानता, निकाह हो गया मेरी बीवी है। जब घर में गए तो उसने चेहरे से जब नकाब हटाया तो चांद के टुकड़े की तरह उसका चेहरा खूबसूरत इतनी कि कभी ऐसी औरत नहीं देखी। फिर उस खातून ने कहा कि आपको पानी पिला दी, पानी लेकर आई। थोड़ी देर के बाद पूछा कि भूख लग रही है, थोड़ा खाना खा लो। हाँ ठीक है, तो बोले आ जाओ अंदर। आगे के कमरे से अंदर के कमरे में ले गए तो क्या देखता हूँ, जिस दीवार को उबूर करके जिस किचन में आया था वही किचन है और वही बर्तन है जिसका मैंने मुंह हटाया था। और वो खातून ने जब खाना निकालने के लिए बर्तन का मुंह हटाया तो वो सालन की हालत को देखकर समझ गई, कहने लगी ऐसा लगता है किसी ने आज हमारे बर्तन में हाथ डाल दिया या कोई जानवर ने अंदर जो मुंह लगा दिया, ऐसा खाना मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। यूं कहते हुए पलटी तो क्या देखती है, तो नौजवान तो सजदे में जाकर हिचके मार के रो रहा है। उसने अपने शौहर को उठाया कि आप क्यों रो रहे, वो कहने लगा कि असल में कोई जानवर नहीं आया था, यही वो हैवान बना था कि जो भूख की वजह से तीन दिन का भूखा अब मरने के काबिल हो गया, तो फिर जो है ये दीवार को उबूर करके मैं ही आया था, चोरी करके खाना चाहता था, दो दांत के बीच में मैंने बैगन दबा भी दिया था लेकिन मेरे अंदर के ईमान ने पुकारा तो मैं इसी हालत में छोड़ के मस्जिद में चला गया, अल्लाह से रोकर मांगा कि आज के बाद अब तेरे दर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उस अल्लाह ने तुमसे निकाह कराया, उस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, बोले बड़े दिनों से दुआ करती थी अल्लाह तुझसे डरने वाले से मेरा निकाह कराना, जो तुझसे न डरे ऐसे से मेरा निकाह मत कराना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुत्तकी से मेरा निकाह कराया, कि तुम्हारे तकवे पर अल्लाह ने तुम्हें मकान दिया, तुम्हारे तकवे पर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुम्हारे तकवे पर अल्लाह ने तुम्हें बीवी दी और तुम्हारे तकवे पर अल्लाह ने तुम्हें हलाल रास्ते से खाना अता कर। तो मेरे भाई मायासों को बिनाई सुनाया तसीब, जब सिफात आएंगे तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी पहुंचाएंगे जहां पे बंदे को घुमा भी नहीं होगा। जो मसाइल दुनिया के समझ के चल रहे और जो दुनिया के मसाइल के लिए अपने आमाल नबूवत को हम जो है कुर्बान कर देते हैं, कष्टों को कुर्बान कर देते हैं, मशरे को कुर्बान कर देते हैं, तीन दिन को कुर्बान कर देते हैं, इज्तिमाओं को कुर्बान कर देते हैं, चिल्लों को आगे पीछे कर देते हैं, हालांकि मेरे भाइयों ये वो मेहनत है जिसके जरिए से जिंदगी में सिफात आते हैं और सिफात पर अल्लाह ताला आखिरत को बनाते हैं। और हजरत भाई बहन साहब फरमाते हैं जिन आमाल से आखिरत बनेगी उन्हीं आमाल से दुनिया बनेगी। इसने एक महीने से हमारी दरखास्त है मेरे भाइयों, आज तक हमने दावत के काम के साथ जो भी जो है गफलत की है, जो बेरुखी की है और जो हमने आज तक जो दावत के काम के साथ में जो रूगर्दानी की है और जो दीन के तकाजों के बारे में गफलतें की है, हम इस इज्तिमा में सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से अहद पैमान करेंगे कि आज के बाद दीन के तकाजे हमारे सामने आएंगे, उसके सामने दुनिया का कितना भी बड़ा तकाजा टकराएगा हम दुनिया को कुर्बान करेंगे, दीन के तकाजे को कुर्बान नहीं करेंगे। हम अपनी जान की हर सांस को, अपने मां की हर पारी को, अपनी जवानी की हर ताकत को, अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह के दीन के तकाजे पे लगाएंगे इंशाल्लाह, लगाएंगे भाई इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएगा भाई बताओ, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इस बच्चे में बहुत सारे साथी ऐसे जो ये सोच कर नहीं आए कि हमें अल्लाह के रास्ते में जाना है, हमें वहीं से जाना है, हमें धरती बना के जाना है, हमें जल्द से जल्द जाना है, ये कोई सोच कर नहीं आए। लेकिन मेरे भाई हमारे सामने जो मजलिस बाकी है, असर के बाद की मजलिस, मगरिब के बाद की मजलिस, मजलिस से पहले जल्दी से फारिग हो, आगे आकर बैठे, दो रकात सलातुल हाजत पढ़े, मौका हो नहीं है आप आगे दुआ मांगे अहला मजलिस में ऐसी बात करा दे, मेरी हिदायत के लिए हो जाए, मेरे दिल को पलट दे, मैं तेरे काम के बन जाऊं, तू मुझे अपना बना ले और मौत तक तेरा काम करने वाला बन जाऊं, अहला ऐसी बात कहलवा दे और यही से तेरे रास्ते के लिए मुझे कबूल फरमा। मांगेगा इंशाल्लाह, कौन कौन मांगेगा भाई, अल्लाह कबूल फरमा। अपने जात के बारे में फैसला करना, अपनी जात के बारे में ये मत सोचना जमा करे अमीर को नहीं तो मोहल्ले से उसकी तस्कीर करेंगे, मस्जिद से उसकी तस्कीर करेंगे, कौन पोसा से उसकी तस्कीर, अपनी जात की तस्कीर करो अपनी जात। भाई बाबा मुर्शिद पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाते थे पुराना वो है जो अपनी तस्कीर खुद करे, जिसे अपनी तस्कीर करना आई उसे तबलीग आई, दूसरों की तस्कीर तो खूब करते अपनी तस्कीर, अपनी जात की तस्कीर। मेरे चार महीने कब लगे, इतना वक्त हुआ दावत में चलते चलते, अभी तक 4 महीने नहीं लगे, और लगे तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले। हजम इसमें ऐसा फरमा रहे 3 साल हो गए, हर हमारा साथी अपने 4 महीने की तरतीब बनाए। मुल्कों के तकाजे, 19 जमातों की कारगुजारी आई, हर जमात ने सुनाया जाने वालों से, जमात की वापसी से हर मुला इलाकों के जिम्मेदार ने कहा जाकर दूसरी जमात भेजना, जाकर दूसरी जमात भेजना। हर इलाकों में जमात के तकाजे, 92 मुल्क के 92 मुल्कों से जो है वफूद आए थे, इलाकों से जिम्मेदार आए थे, और 92 मुल्क से जमातों के मुताले कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से मेरे भाई जमातों के मुताले हैं, एक हम है कि मेरे भाई दुनिया के तकाजों के लिए हम अपने दीन के तकाजों को कुर्बान कर रहे हैं। इस मजमे में मेरे भाइयों, अब तक जिसके 2 मरतबा 4 महीने लगे, वो तो नियत करे इंशाल्लाह कि हमें अल्लाह के दीन के तकाजों पर जाना है, इंशाल्लाह मुल्कों में जाना है, इंशाल्लाह ऐसा ही नियत करते हैं इंशाल्लाह। आपको एक बात कहकर बात खत्म कर दूं, एक जमात एक इलाके में काम कर रही, 2 साल बीमारियों की वजह से उस मुल्क में जमातें नहीं गई, जमात ने आगे कारगुजारी सुनाई, 2 साल की गफलत की वजह से 100% ईमान वालों का मुल्क गैरों ने ऐसे हालत में मेहनत की, और गुर्बत की वजह से बातिली तंजीमों ने ईमान वालों के ईमान को ऐसे लूटा कि 100 में से 20% मुर्तद हो गए। 2 साल पहले 100% मुसलमान थे, अब 80% मुसलमान है, सिर्फ 2 साल की गफलत पर। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अगर थोड़ा और आगे पीछे हो गए तो उन मुल्कों के ईमान वालों का ईमान कहां चला जाएगा। इसलिए इस महीने में जिसके 2 मरतबा 4 महीने लगे, वो नियत करे इंशाल्लाह मशवरे से जाना है। जिसके 1 बार 4 महीने लगे, वो नियत करे कि जल्द से जल्द दूसरी बार 4 महीने लगाना है। इसी जो है इज्तिमा में अपनी तरतीब बनानी है, अपने बड़ों से मशवरा करके जल्द से जल्द जमातें 4-4 महीने की बनानी है, अपने साथ मोहल्ले की गांव की मस्जिद की जमातें बना के लेके चलना है। और जिसके अब तक नहीं लगे, अब वो इंतजार नहीं करें मेरे भाइयों आसानी का, पता नहीं कौन सा फितना आएगा, कौन सी बीमारी आएगी। अल्लाह ने बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, हमारे साथ में चलने वाले कब्रों के हवाले हो गए, अल्लाह ने हमें मौका अता फरमाया, एक नई जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है। इस जिंदगी को गनीमत समझकर जल्द से जल्द हम इस साल के खत्म होने से पहले बकराईद के बाद फौरन अपनी तरतीब बनाए, हमें 4-4 महीने के लिए जाना है इंशाअल्लाह, जाएंगे वो इंशाअल्लाह, कौन कहता है इंशाअल्लाह हम 4 महीने की तरतीब बनाएंगे। माशाअल्लाह, जरा खड़े हो जाओ, आपके नाम नहीं लिखते लेकिन जरा खड़े हो जाओ। हमारे भाई इस्माइल साहब ने मशवरे के अंदर कहा, हाथ उठाना सियासत लोगों का काम है, सियासी लोगों का, और खड़े होना ये सहाबा का, सहाबा की सुन्नत, खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से आपकी फहरिस्त बना देंगे, जरा खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, जिसके लगे हैं वो भी खड़े हो जाओ, जिसके नहीं लगे और नीयत है वो भी खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, 2 मरतबा वाले भी खड़े हो जाओ, 1 मरतबा वाले भी खड़े हो जाओ, बगैर लगाए भी खड़े हो जाओ, जिसके नहीं लगे वो भी खड़े हो जाओ, अल्लाह आपको देख लेवे, फरिश्तों में फहरिस्त बन जावे, और अल्लाह जल्द से अपने दीन की मेहनतों के लिए कबूल फरमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जान में बरकत दे, अल्लाह माल में बरकत दे, अल्लाह जिंदगियों में बरकत दे, अल्लाह ईमान में बरकत दे, अल्लाह अमालों में बरकत दे, अल्लाह इज्जतों में बरकत दे, अल्लाह अपने दीन के तकाजों के लिए मुल्कों के लिए कबूल फरमा, अल्लाह कबूलियत की माहौल लगा दे, मौत पर ईमान दे देवे, सहाबा के साथ हशर फरमा देवे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये बेटा मैं बहुत सारे के दिल में आ रही, मत कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कबूलियत का वक्त है, पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होगी, अल्लाह के यहाँ से कबूल हो जाएंगे मेरे भाइयों। हम नहीं कहते आपकी कल दुआ से चले जाना, बस हमें तरतीब बनाना है, 2 महीने से बाकी आपस में मुजाकरा करो, घर पे फोन करो, मशवरा करो, अपने साथियों से मशवरा करो, अपने गांव वालों से मशवरा करो, मेरे जी आ रहा है अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, अपने साथियों से मशवरा करो, हमारे साथी हमें आपको जो है अपने आपके हल आपके हालात का हल बताएंगे, निकलने की सबील समझाएंगे, निकलने का तरीका बताएंगे। ये इरादा हुआ है मेरे भाइयों, सलात हाजत पढ़ के अल्लाह से मांगो, थोड़ा सा सदका दे दो अल्लाह के रास्ते में, और फिर जो है मेरे भाइयों अपने साथियों से मशवरा करो, और अपनी गांव की मस्जिद की पूरी जमात बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। के बाद भी मजलिस होगी, और मगरिब के बाद भी हमारी इज्तिमा की आखिरी मजलिस, और इंशाल्लाह बड़े नफे की बात होगी। मौका हमें बहुत अल्लाह ताला ने गनीमत का अता फरमाया है, आलमी तकाजों को इस्तेमाल होने वाले हमारे बड़े हिस्सों में इंशाल्लाह उम्मीद हमारे दरमियान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भाई से दरखास्त है कि भाई देखो अपने औकात की हिफाजत करना,
अपनी जरूरियात से जल्द से फारिग हो जाए, आमाल में लगे, और जो है अजान से पहले हम जो है सबों में बैठ जाए, असर के बाद की मजलिस में शरीक हो, मगरिब के बाद की मजलिस में शरीक हो, उसी में इरादे हो और खड़े होकर नाम लिखाए, दुआएं मांगे अल्लाह से, उसी में दुआ होगी और फिर जो है ईशा की नमाज और खाना होगा और फिर उसी में हमारा इज्तिमा पूरा होगा। हमारे साथियों की गुजारिश है कि बाकी मजलिसों में फिक्रों के साथ शरीक होने की कोशिश करें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो हमारा साथी कह रहा अभी जाना नहीं है, एक पांच मिनट बैठ जाओ, हल्का लगाओ, गांव का हल्का, मस्जिद का हल्का, पंचकोशा का हल्का, हल्के वाइज बैठो भाई साथी, हल्के वाइज बैठ के अपने सालाना चिल्ला चार महीने का जो वक्त लिखा दो, हमारा सालाना चिल्ला कब लगेगा, साथ इस साल चार महीने कब लगेंगे, हल्का बनाकर बैठो, खर्चा बना लो इतना करो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह आपको देता है कहो, और अपने महाना तीन दिन कौन से हफ्ते में लगेंगे, अपने ढाई घंटे कब लगेंगे, ये तीन उम्र के बारे में मुझे हमारे साथ इरादे करें, हल्के वाइज बैठे जल्दी से पर्चा बनाकर दे देवे और अपनी अपनी पुरानी दुआ पढ़ के जाओ, इसके अलावा ना जाए मेरे भाई हो, हाँ आपको जमीयत का मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह, साढ़े पांच बजे हफ्ते की नमाज है।